حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سارے باب میں روح کے مقرائے سے جو جتنی اشارت فرمائی ہیں ان سب کا خلاصہ عادت کر دیتے ہیں اگرچہ اس کی دیری مختلف حوالوں سے گزر چکی تاکہ اس کے بعد جو اگلا باب آ رہا ہے ہم اس کی طرف پڑھیں وہ اس باب میں وہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو انسانوں کے دماغ میں ایک عرصے سے پیدا ہوتا رہا اور ہمارے دور میں جب سے یہ بے محاقہ آزادی کا دور آیا ہے اور مادر فدر آزاد تہذیب پھیلی ہے بہت یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم نے کیوں اللہ کے نزدیک اس طرح کے ہیں کہ ہم عبادت کریں؟ انسان آزاد پیدا ہوا ہے, وہ چاہے تو خدا کی عبادت کرے, نہ چاہے نہ کرے. اللہ تعالیٰ یہ پابندیاں لگاتا کیوں ہے, کیوں ضروری ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں؟ ہمیں اپنے اختیار کا استعمال ہونا چاہیے. تو بڑی عام بحث ہے, اور اس سے پہلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے روح کے متعلق جو باتیں بیان کی آج اس کا خلاصہ کرتے ہیں تاکہ پچھلی باتوں کے ساتھ اس کا رب جڑے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ روح کا علم اللہ نے اس امت کو دیا ہے, اور قرآن کریم کے اس جملے سے کہ وہ معمولی تمہیں علم اللہ فضیلا کہ تمہیں روح کا تھوڑا علم دیا گیا ہے, یہ استنباط کرنا کہ اس امت کو روح کے متعلق تھوڑا سا علم دیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے. اور اپنے اس موقف کے حق میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن کو لائے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, کہ یہ جو یہودی ہیں انہیں اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے روح کے بارے میں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کو روح کا علم اللہ نے تھوڑا دیا تھا, یہ امت مراد نہیں ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب بالکل اس بحث کے جب آخر پر پہنچتے ہیں اور جہاں پر اس بحث کا اختتام کرتے ہیں وہاں پر خود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں وَلْنَقْتَصِرْ مِنْ حَقِيقَةِ الرُّوحِ عَلَىٰ هَٰذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ, کہ جو کچھ میں نے آپ سے کیا ہے اس کی روشنی میں روح کی حقیقت کو سمجھو تاکہ ہم اس علم کو تسلیم کر لیں اور فارغ ہو جائیں. قبل اس کے کہ پردہ اٹھے ایک ایسے علم سے جو اس سے بھی اعلیٰ, तो पहले वो कहते हैं कि इस उम्मत को इल्म दिया गया, फिर वो कहते हैं कि बस जो कुछ पहले कह दिया इतना काफी समझो कबल इसके कि मैं उस इल्म में दखल दूं जिस इल्म में पर्दा उठे तो इससे भी ज्यादा आगे की चीज है। तो इसका मतलब ये है कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने विजदान से कश से रूह के बारे में ऐसी चीजें मालूम थी कि उन्होंने आम लोगों से इसका इजहार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि हर आदमी इस इल्म का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हर आदमी की समझ में ये बात नहीं आ सकती। ये असूल किताब सुन्नत में भी आया है और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पे फुकहा कहते हैं कि ये मसला समझ लिया जाए लेकिन लोगों में बयान न किया जाए। जो ये कहती हैं कि बस इस हद तक ठीक है और इसके बाद जो आगे इल्म है वो हर आदमी नहीं समझ पाता। चुनाचे से हुज़ैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत आती है कि उन्होंने कहा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इल्म के दो बर्तन हासिल किए, एक इल्म को वो है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं और दूसरा इल्म वो है कि अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो लोग मेरी इशारत काट दें और इशारा करते थे गर्दन की तरफ। और मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहते थे दूसरे जिस इल्म के बारे में उसकी वजाहत होती है जब वो ये कहते थे कि अल्लाह मैं सात हिजरी से तेरी पनाह मांगता हूँ और लड़कों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ, क्योंकि हुकूमत का मामला इतना अहम है। कहते हुज़ैर इब्न अय्याद रहमतुल्लाह अलैह सिक्सी ने पूछा या उन्होंने खुद फरमाया कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि अल्लाह इस वक्त मेरी दुआ को कबूल कर लेगा तो मैं अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगू और मैं अल्लाह से अर्ज करूं कि अल्लाह हमारे हुक्मरान सही हुकूमत आ जाए, क्योंकि हुक्मरानों के साथ मुल्क की मईशत ही नहीं और दुनिया ही नहीं रूहानियत तक वाबस्ता हो जाती। इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कमीनों को हुकूमत मिलने लगे तो तुम उस वक्त कयामत का इंतजार कर। कमीना कहते हैं उस आदमी को जिससे दूसरे को कोई नफा ना, अपने घर में जितने मर्जी मुनाफे वो उठाए, अपना खानदान अपनी फैमिली अपने लोग अपना इलाका उसकी तरफ मुकद्दा चला जाए और बाकी लोगों को बाकी उम्मत को बाकी मुमलिकत को उससे नफा ना पहुंचे तो ऐसे शख्स को कहते हैं रज़ील या कमीना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कमीनों को हुकूमत मिलने लगे तो क़यामत का इंतजार करना, या तो मतलब ये था कि बुर्ज़े क़यामत में ऐसा होगा या आपका मतलब ये था कि फिर क़यामत मच जाएगी हर आदमी की जिंदगी में इंतजार करना मौत का क़यामत का फिर रहने का जमाना नहीं है। इसलिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सात हिजरी से पनाह मांगते थे और लड़कों की हुकूमत से और सात हिजरी में यज़ीद की हुकूमत आ गई। सूफिया ने जब इस हदीस पर बहस की कि उन्होंने कहा कि वो दूसरा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया अगर मैं उसका इजहार करूँ तो तुम मेरी शहादत काट दो, तो उससे हकायक और तसव्वुफ का इल्म मुराद था, कुछ भी मुराद हो। शाहुल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहली बात ये कहते हैं कि देखो रूह का इल्म इस उम्मत को दिया गया, लेकिन आगे चल के भी तनकीद पर पहुंचे हैं कि वो कहते हैं कि बस ये जो कुछ है यही समझ लो, इससे ज्यादा आगे की बातें जो हैं वो मैं तुमसे बयान नहीं कर रहा, मुराद यही थी कि इससे आगे की बातें हर आदमी की समझ में आने वाली नहीं है, उसका ताल्लुक तसव्वुफ से या बहुत गहरे फलसफियाना उलूम से है। फिर उन्होंने दूसरी बात फरमाई और उन्होंने कहा रूह पैदा कहां से होती है। आगे चल के शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रूह की फिर नफी कर देंगे
वो कहते हैं कि हुकमा ने ये कहा अतिका ने ये कहा कि रूह दिल से पैदा होती बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें शरीयत ने ये शरे किताबों ने या फुकहा ने तबीब से राय दी और अतिका से राय लेकर फिर उन्होंने मसले को तहरीर किया और बड़ी अहम बात है इसे समझना चाहिए कि फिका की जितनी किताबें हैं जब लोग इन्हें पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये हदीस में कहां आया है ये किताब में कहां आया है ये सुन्नत में कहां आया है तो भाई हर मसला शरीयत का हनफी शाफी हम्बली मालिकी कोई भी फिका हो हम किताब और सुन्नत से ना साबित कर सकते हैं ना इसको कोई जरूरी समझता है ये मसाइल ऐसे हैं जो तिब की वजह से दिए गए हैं इसीलिए पुराने जमाने में कोई आदमी मौलवी बनता ही नहीं था जब तक उसने तिब नहीं पढ़ी होती तिब के पढ़ाने का इतना एहतमाम था कि अभी एक सदी पहले के जितने मौलवी थे ये मौलवी होने के साथ साथ तबीब भी होते थे और करते ये थे फायदा उसका ये था कि वो तबीब किसी भी गांव में जाके वो हकीम मस्जिद से इस्तेमाल लेता था अपना मतलब भी खोल लेता था सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर के बाद शाम तक और रात तक वो अपना पैसा रोजी कमाता था और लोगों को नमाज की तलकीन कर दी नमाज पढ़ा दी जुमा पढ़ा दिया तो लोग उस आदमी को इज्जत की नजर और कदर से भी देखते थे और वो आदमी मोहताज भी रहता था लोगों को दवाइयां भी देता था पैसे इज्जत से कमाता था और दीन मस्जिद से सिखाता था इसलिए हकीम जिन्होंने भी देखे हैं हकीमों की अक्सरियत बड़ी नेक शरा की पाबंद और बड़े अच्छे लोग होते थे और जब से वो हिकमत का निजाम धर्म भरम हुआ खत्म हुआ और हमारे यहाँ कॉलेजेस बने मेडिकल कॉलेजेस बने तो मेडिकल कॉलेजेस में अक्सरियत डॉक्टर की फासी को फाजी हुई गुनाहगार हुई वो हकीमों के परे तक नहीं पहुंच सके दूर दूर तक वो तकवा और नेकी उनमें नहीं आ सकी इन लोगों में और ये ऐसी हकीकत है जिस पे गालिबन ज्यादा दलायत देने की जरूरत नहीं है हकीमों को देख लें तो उसके मुकाबले में डॉक्टर्स को देख लें तो आपको खुद वाजे समझ आ जाएगी वजह उसकी ये थी कि निसाब तालीम हकीमों का ऐसा था कि वो दीन को पढ़ते थे उसका असर आता था और जबकि मेडिकल कॉलेज में जितने भी उलूम पढ़ाए जाते हैं बेहतर से बेहतर तहकीक रिसर्च क्या कहने उन चीजों के ऊपर सामने आती है लेकिन वहां पर मजहब की तालीम नहीं है इंसानी अखलाकियात की तालीम नहीं है वो पूरा निसाब इस बात से खाली है कि इंसान इंसान कैसे बनता है खुदा का खौफ कैसे पैदा होता है अल्लाह का ताल्लुक कैसे पैदा होता है हुकूमत ने जबरन इस्लामियात डाल दी है तो पढ़ लेते हैं हुकूमत ना डालती तो इस्लामियात को भी कोई ना पढ़ता इसके दिल्ली मसाइल जहां आते हैं वो कहा उसका दावा नहीं करते कि ये हमारा मसला किताब सुन्नत से साबित है वो कहते हैं ये सिर्फ का मसला है मसलन कि जितनी किताबें पढ़ाते थे बच्चों को उस जमाने में वो निसाब पढ़ाते थे में एक फिका भी शामिल होती थी कि बच्चों को सिखाना कि अकीदा क्या तो उलिया का निसाब अपनी देख लें पहली जमात के बच्चे से लेके डॉक्टरेट तक पीएचडी तक जो लड़का भी उस तालीमी निजाम से गुजरता है हर एक में अकीदे का निसाब शामिल है हर एक में से मिलेगा कि खुदा की तौहीद क्या है खुदा की जात क्या है सिफात क्या है खुदा के साथ शिर्क कैसे बनाए ये मर जाएगा मगर शिर्क नहीं करेगा वजह उसकी यह है कि तालीम में हर जगह तौहीद तौहीद अल्लाह की तौहीद और वादानियत ये सब चीजें शामिल यही वो चीज थी जो पिछले जमाने में फुकहा पढ़ाते थे और बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता था या मदरसे में पढ़ाया जाता था उसमें मसलन एक किताब की बुनियाद मुसल्ली वो पढ़ाते थे अब वो मुनिया मदरसों में भी नहीं पढ़ाते वो मुनिया पूरी की पूरी किताब तहारत से लेके नमाज के मसाइल पर मुश्तमिल है बस गुरु साहब का पढ़ा देते थे ताकि बच्चा इन सारी चीजों को समझ ले अब मसलन एक मिसाल के तौर पर एक मसला आता है और फुकहा लिखते हैं जब आदमी तहारत हासिल करे अब तो टिश्यू पेपर आ गए पुराने जमानों में ये डायरेक्ट भी ऐसे नहीं होते थे, लोग खेतों में जाया करते थे, उसके साथ साथ टिश्यू पेपर भी नहीं होते थे और लोग ढेले इस्तेमाल करते थे। वो कहानी उसमें लिखा है कि वो कहती है कि अगर कोई आदमी इस तरह के संजा करे और खेतों में जाए तो मना है कि वो नोक दांत पत्थर इस्तेमाल ना करे। फिर वो लिखते हैं मकरूह। अब एक आदमी उसके कहता है कि जनाब ये कहाँ आया किताब सुन्नत में? किताब सुन्नत में कहीं नहीं आया। वो बच्चे को इसलिए सिखाना है कि बच्चे को इतना अकल नहीं है, शऊर नहीं है, कोई नोकदार पत्थर कोई चीज ऐसी ले लेगा और खुदा ना खास्ता उसको जख्म हो जाए तो अपनी सेहत की हिफाजत भी तो फर्ज है ना। ये बच्चे को सिखाया जा रहा है, ऐन मुमकिन है कि एक आदमी बेवकूफ हो और उम्र उसकी 30 साल हो जाए और फिर भी किसी नोकदार चीज से अपने आप को जख्मी कर ले। अकल का मैार भी तो हर एक का एक नहीं होता। तो जब तालीम उसे पढ़ा दिया जाएगा कि ये बात मकरूह है, वो खुद ब खुद उससे बचेगा कि शरीयत ने इसे मकरूह करार दिया है, शरीयत ने इसे पसंदीदा करार नहीं। अभी जिस का ताल्लुक खालिद सिब से है उससे नहीं। एक दूसरी मिसाल की देखे, खड़े होके पानी पीना। तीन पानी ऐसे हैं जिसपे कहा मुत्तफिक हैं कि जायज है। बहस इसमें है कि जायज है या काबिले सवाब है। जमजम खड़े होके पीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया था। वुजू से बचा हुआ पानी खड़े होके पीना हदीस में आया है कि जो शख्स वुजू से बचे हुए पानी को खड़े होकर पिएगा अल्लाह ताला उसे शिफा दे देगा। वुजू से बचा हुआ पानी कितना होता है? वो लोटे से लोग वुजू किया करते थे तो वो पानी पी लें। फिर हौज से वुजू करता है तो कई को कहा इस तरफ गए कहते हैं हौज से पानी पी ले। अब हौज की बजाय ये टैंकियां आ गई हैं तो टैंकी से पानी पी ले। वो कहा सारे वो कहते हैं कि वुजू से बचा हुआ पानी इससे हुआ कि वुजू से बचे हुआ पानी अगर बड़ा जखीरा है तालाब और टैंकी तो शामी का रुझान इस तरफ लाड़े का। वो कहते हैं बहुत से बचा हुआ पानी जो है उससे भी पीने तो ठीक हो जाएगा, कोई इसमें शामिल। तीसरा पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले गए और उन्हें साबित रजी अल्लाह ने कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकीदे पे खड़े होके पानी पिया। अब मशकीदा ऊपर लटका हुआ होता है जाहिर है, अब तो मशकीदे बचने वाले देखे नहीं मगर जब मशीदों का दौर था तो लोग ऊपर ही खड़ा होते लटका के रखते थे, उसमें से पानी पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके। और उन्हें साबित रजी अल्लाह अन्हा कहती है कि मैं उक्की और मशकीदे के चमड़े को वहां से काट लिया जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ लगे थे ताकि मैं बरकत हासिल करूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक यहाँ पर लगे हैं। ये सहाबा रजी अल्लाह अन्हु का मतलब था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार से बरकत को हासिल करते थे। अब बैठ तो मालूम हुआ कि सबील पर खड़े होकर पानी पीने में कोई हरज नहीं। वाटर कूलर लग जाते हैं, अब मशीदे नहीं रहे। यहां कोई आदमी खड़े होकर पानी पीता है तो बिल्कुल ठीक है, वो गुनाहगार नहीं। चौथी बात आ गई। अब मसला एक है लेकिन सबका कोई इतना आसान नहीं होता। पूरी तनकीद करनी पड़ती है, बहस करनी पड़ती है कि आखिर मसला उठा ना से। अब चौथा पानी ये आ गया कि मुसाफिर है तो मुसाफिर के लिए सारे ही पानी पीने की गुंजाइश है, ट्रेन है, जहाज है, वहां पर बैठने की जगह भी है, इसके बावजूद अगर वो खड़े होकर पानी पी लेता है तो उसके लिए जायज है, गुनाहगार नहीं होगा। वजह उसकी क्या है? वजह यह कि सफर में हालात जो जल्दी होती है, अपने काम होते हैं तो इतना गुंजाइश नहीं होती कि हर जगह पर तलाश करे कि कहां पर मैं बैठूं और फिर पानी पीऊं, और वो एहतमाम नहीं हो सकता जो घर में होता है। इन सारी चीजों के बाद ताहदावी रहमतुल्लाह अलैह ने इजमा नकल किया है अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह से, और अबू सऊद हनफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये जितना भी खड़े होके पानी पीने की बात है ना, वो कहते हैं कि खड़े होके पानी पीना इन तीन पानियों के अलावा और हालत सफर के अलावा मकरूह है। फिर वो कहते हैं मकरूह कौन सा है? अगर मकरूह तंजीही है तो गुनाह नहीं होगा, मकरूह तालीमी है तो गुनाहगार हो जाए। जैसे गुर्दे कपूरे हैं, अब कपूरों का खाना मकरूह तालीमी है, अगर कोई आदमी खाता है तो गुनाहगार होगा। पानी खड़े होकर पीता है तो है मकरूह, लेकिन कौन सा है? फिर इस पर काबी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खड़े होकर पानी पीना मकरूह तंजीही है। पर ये अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह शेख उल इस्लाम के जमाने में तुर्कों की हुकूमत में तुर्कों की इमारत में बहुत बड़ा मनसब था इनका और इनका फतवा चलता था। सुल्तान मुराद ने आखिरी मर्तबा बैतुल्लाह तामीर किया था उनके बाद शाहिद के दौर में शाहबाज के दौर में इसकी तामीर हुई है वरना उससे पहले आखिरी मर्तबा तामीर जो हुई थी बैतुल्लाह शरीफ की उसकी सारी अंदर से बाहर से सारी तरह तामीर की गई थी वो शाह मुराद रहमतुल्लाह के जमाने में थी और मुराद तुर्की थे और खलीफा मुस्लिमीन थे और उन्होंने अबू सऊद रहमतुल्लाह से फतवा लेने के बाद बैतुल्लाह की तामीर शुरू की थी। वो इतने बड़े मुफ्ती थे कि खुलफाए वक्त जिनसे फतवा लिया करते थे उन्होंने कहा यह मकरूह तंजीह है। जब मकरूह तंजीह हो गया खड़े होके पानी पीना तो फिर गुनाह ना रहा। अच्छा फिर आप मना क्यों करते हैं खड़े होके पानी पीने से? इससे बड़े अच्छे दो तीन लफ्ज लिखे हैं इसने ताबी रहमतुल्लाह की रफ्तार शरह में और वो कहते हैं कि वजह इसकी शरई नहीं है तिब्बी है। अब समझ में आती है बात कि वो कहते हैं इसका ताल्लुक तिब से है क्योंकि अतिब्बा और हुकमा ये कहते थे कि अगर कोई आदमी खड़े होकर पानी पिएगा तो वो पानी फौरी तौर पर मेदे में पहुंचेगा और उसके बाद मेदे में जो हरारत है उसमें कमी आ जाएगी जिगर पे ये असर पड़ेगा फलां जगह पे असर पड़ेगा फलां जगह पे असर पड़ेगा। अब एक डॉक्टर कहता है जनाब ये सब गलत है जमाने की तहकीक। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है साहब गलत होगी उस जमाने में इतना ही तिब था लोगों ने इतनी बात की अब तिब बढ़ गया है अब फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा लेकिन इसकी बुनियाद शरीयत नहीं है इसकी बुनियाद तिब है। अब डॉक्टर की तहकीक बदल गई अब वो कहते हैं खड़े होकर पानी पी लो चलिए पी लिया उसमें गुनाह हुआ या नहीं हुआ तो फिर लौटेंगे शरीयत की तरफ वो कहेंगे मकरूह तंजीह है और उसमें गुनाह नहीं है लेकिन इस मसले की बुनियाद तिब पर है इस मसले की बुनियाद शरीयत पर नहीं। कितने ही मसाइल ऐसे हैं जिनकी बुनियाद असल में तिब पर है। इनकी जो मौलवी थे ये तिब जरूर पढ़ते थे और फिर जब तिब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा तो उलमा ने शोर मचाया उनका रे तिब को निकाल रहे हो अगर तिब बीच में से निकल गया तो ये शरी मसाइल का क्या बनेगा मौलवियों को मसला कैसे बयान करेंगे पता कैसे चलेगा। लेकिन किसी ने न मानी और तिब आहिस्ता आहिस्ता निकल गया। अब दौर आ गया है वो कि फलसफा और मंतिक को निकालते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं। अब हम जैसे शोर में जाते हैं कि फलसफे और मंतिक को ना निकालो बारी ताला की सिफात का मसला पिछले कई सदियों का इल्म हमारा खत्म हो जाएगा अब कोई नहीं सुनता नतीजा इससे ये निकलेगा एक अर्थ सदी के बाद ये सारी चीजें थी फलसफे और मंतिक की भी फारिग हो जाएंगी। तो जहाँ पर एक मुफ्ती को बड़ा गहरा समझदार होना मुतकाजी था फतवे का कि उसकी समझ रकल और शऊर कितना है उसको तिब का इतना हासिल है वहां पहुंचकर 50 साल बाद मुफ्ती परेशान होगा कि अब क्या करूं। इसीलिए अब हमारे मुफ्तियों को डॉक्टर से रजू करना पड़ता है कि डॉक्टर साहब ये क्या मसला है ये क्या मसला है। अगर ये तिब पढ़े हुए होते और मौजूदा दौर का मेडिकल कॉलेज साइंस पढ़े हुए होते तो इन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी ये खुद ही फतवा देते और खुद ही उसका हिसाब करना। ये है इतना बड़ा फर्क। इसीलिए जितने पुराने ये मौलवी थे इनमें जितने फाजिल थे इन्होंने तिब पढ़ी हुई होती और उसकी दो मिसालें अगर आप देखना चाहें तो ये दारुल देवबंद है जिसके फारिग दुनिया भर में फैले इनकी वो रिपोर्ट पढ़े रुएदाद पढ़े जो इब्तदाई जमाने उसमें इनकी का इश्तेहार है कि हमने अपने बच्चों को तिब पढ़ा दिया है और हमारे यहाँ इस साल जो मौलवी है इसमें जराहत भी पढ़ाया गया है और अब हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो आए और हमारे इन बच्चों को सर्जरी सिखाए। फिर उसके बाद उन्होंने इश्तेहार दिया है कि सर्जरी के आलात खरीदने के लिए काफी पैसा दरकार है उदाहरण के पास पैसा नहीं है कि सर्जरी के आलात खरीद सके लिहाजा मुसलमान चाहिए कि चंदा दे ताकि हमारे मौलवी सर्जरी कर सके और सर्जन बने ताकि लोगों के वो जो मामला है जो हिम्मत के साथ साथ जदाई और ये चीजें ये बुनियाद कुछ साल के बाद फिर उन्होंने इश्तेहार दिया है और वो कहते हैं अब हमारे यहाँ जो मौलवी फारिग हुए हैं इन्हें हमने ये धाते और दवाइयाँ इतनी पढ़ा दी हैं कि कि ये अब दवाई खुद भी बना सकते हैं तो फार्माकोलॉजिस्ट ये हो सकते हैं पैसे नहीं है वगरना हमारा ख्याल ये है कि जो बन में फार्माकोलॉजी का शोबा खोला जाए और अगर पैसे मिल जाएं तो यहां पर हम अपनी फैक्ट्री लगाएं ताकि हमारे पढ़े लिखे मौलवी जो हैं ये दवाइयां तैयार कर सकें अब किसी मौलवी से जाके पूछ लो तो उसे फार्माकोलॉजी का ही पता नहीं है कि दवाइयां क्या तैयार करती हैं और जरात और सर्जरी तो बहुत दूर की बात है उसे खबर ही नहीं है वजह उसकी बुनियादी तौर पर यह है कि वो निसाबे तालीम जो था उसे काटते चले गए ये काट दो ये काट दो ये काट दो और वो पढ़े लिखे कुछ थे नहीं अगर खुद सर्जरी पढ़ी हुई होती खुद फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई होती तो कभी ना निकालते इसी तरह जैसे आज फलसफा मंत्र बहुतों ने नहीं पढ़ा और फिर वो कहते हैं इसे निकाल दो इसे निकाल दो इसे निकाल दो अगर वो पढ़े लिखे होते सारी चीजों के तो वे पता चलता कि इस चीज की कितनी आबादी है होता ये है कि हर जमाने में शरीयत का तिब के साथ ताल्लुक रहा इसी वजह से अगर आप कभी ये दास्तान पढ़ना चाहें तो बर्रे सगीर के उज़्बेकिस्तान से जो ताल्लुकात है इसको पढ़ना चाहिए ये उज़्बेकिस्तान जो है ये कोई मामूली चीज नहीं है इस उज़्बेकिस्तान से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे यही से इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह थे शरा वकाया के मुसन्निफ यहां के थे काजी खान इतने बड़े फकीह और जंदी रहमतुल्लाह अलैह यही के थे बाबर बादशाहों में यही का था वो लिखना यहां से आया इतने नाम हैं कोई आदमी क्या बयान करे बाबर बादशाह जब हिंदुस्तान आया तो इसे तिब से बड़ा ताल्लुक था इसे मोहब्बत की एक तरह की इश्क था बाद चीजों से उनमें से एक ये नबातात थी नए से नए फूल नए से नए फल मिट्टी का तजर्बा करना कहां बीज मिट्टी को कबूल करता है कहां नहीं कबूल करता और हिंदुस्तान में बाबर जब पहले साल आया तो बड़ा परेशान रहा कई मरतबा वो लोगों से कहता था कि तरबूज जहां नहीं होता खुदा जाने क्या बनेगा आप तौर पे फरगाना उज़्बेकिस्तान से तरबूज के बीज मंगवाए वहां के माली मंगवाए आगरा में मिट्टी तैयार करवाई और जिस दिन वो फूटा है बीज माली ने आपके खबर दी बादशाह बाबर ने सोने से लाद दिया उसको इतना खुश था कहा इतना सोना इसे दे दो शुक्र है यहाँ पर की इतनी अच्छी चीज पैदा हो गई फिर बाबर तरबूज को लाया तरबूज जब उसे चखा तो इत्मीनान हुआ कहने का हमारे देश जैसा तो नहीं है वहां तो बहुत अच्छा होता है लेकिन गनीमत है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ और दूसरा उसे मोहब्बत की तिब से यूसुफ इब्ने मोहम्मद को उसने वहां से बुलाया बहुत बड़े तबीब थे फिर मोहम्मद इब्ने यूसुफ को बुलाया उसके बेटे को हकीम के उन्हें दिल्ली में जगह दी जागीरें दी और कहा तिब पे नए से नए तजर्बे करो और नई से नई चीजें लोगों के सामने लाओ ताकि लोगों को पता चले कि इल्म तिब में कितनी खुदा ने बरकत रखी है नतीजा ये कि बादशाह ने इतनी चीजें तैयार करवाते रहे मरीजों की सहूलत होती रही इतने ज्यादा लोग आए कि बाबर बादशाह ने पूरे मोहल्ले आबाद करवाए जहां तबीबों के अलावा कोई था ही अब हुकूमत अगर कह दे कि डॉक्टर कानूनी बना रहे हैं और सिवाय डॉक्टर के यहाँ कोई नहीं रहेगा कितने खुश हो डॉक्टर के बाद भी हुकूमत ने बड़ा ख्याल किया है वो पुराने जमाने में भी ऐसे ही होता था उन्होंने कहा तुम्हारा काम ही कोई नहीं हुकूमत अपनी तरफ से तुम्हें वजीफे देगी तुमने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क करना है कि किस बीमारी में कौन सी दवा काम आती है क्या चीज होती है और फिर गोली सीना की किताबों के तर्जुमे किए गए गोली सीना की किताब जो है कानून तिब पर जो है चार मरतबा उसका तर्जुमा हमारे यहाँ अब दर्ज किया जा सका है आखिरी तर्जुमा 1917 में हिंदुस्तान में किया गया था नवल किशोर वाले ने छाप किया था अब ना कानून पढ़ने वाले रहे न पढ़ाने वाले रहे उस जमाने में जितने फलसफी थे ये सब के सब चीजें पढ़ाते थे मंतिक फलसफा और उसके बाद इल्म तिब भी पढ़ाते थे तिब के अलावा मौलवी ही नहीं समझा जाता था अब तिब का मसला शबलीला रहमतुल्लाह ने बयान किया इन्होंने कहा मुंह पैदा होती है इन अनासिर अरबा जो कुछ तुम खाते हो मिट्टी से जो कुछ बरामद होता है इससे पानी हवा और उसके साथ साथ आप ये चारों अनासिर मिलते हैं फिर रिजा बनती है उस रिजा से एक लतीफ भाप उठती है वो जो भाप है उसका नाम है ये शबलीला रहमतुल्लाह अलैह ने खुलासे में दूसरी चीज बयान की और उन्होंने कहा कि ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं तो उसके बाद ये रूह बनती है और रूह जो है सबसे पहले जिस चीज को जो वो चीज शामिल हो जाती है जिससे इदराक होता है शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी बात ये बयान कर दी और उन्होंने कहा कि रूह जो है इसके मुतल्लिक बस इतना जान लो अब इस रूह को शाह साहब रहमतुल्लाह ने यहां पे बयान कर दिया पैदा कैसे होती है कल दिल से जो करा देते हैं अब एक डॉक्टर कहता है साहब ये बात तो गलत है बिल्कुल होगी गलत अभी इससे क्या है हम तो ये कहते हैं अतिपा उस जमाने में किस हद तक पहुंचे थे तब ये चिंता उनकी भी अपनी तहकीक थी ये तहकीक बाप के लोगों ने कहा नहीं है तो ना शरीयत तो है नहीं जिसके इंसाफ पे कुछ कुफर इस्लाम जिसको वजूद या नेकी का कोई मसला बने ये तो चिपकी है शाह साहब रहमतुल्लाह ने तीसरी चीज आगे ले आए और शाह साहब रहमतुल्लाह यहां तक तो बात की है आम आवाम के रूह वो चीज है जिससे इंसान के जिस्म में हिस पैदा होती है सुनना देखना छूना इन सारी चीजें पैदा होती है आगे चल के तीसरी बात ये की शाह साहब रहमतुल्लाह ने कि उन्होंने इस रूह का इंकार कर दिया अभी तक उन्होंने कहा ये रूह है उन्होंने कहा रूह ये नहीं कहते हैं ये दस्तमा है एक चीज जितनो में दूसरी चीज उन्होंने कहा यह नस्मा है ये रूह नहीं है पहले बात समझाई कि तुम रूह कहते हो ना वो इस तरह पैदा होती है अब आगे आगे कहते हैं ये रूह नहीं है ये नस्मा नस्मा कदा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है नसीम का लफ्ज आपने सुना होगा रूह का नाम भी होता है जैसे तहराओं में होले से चले वादे नसीम पैसे कहा ना नसीम खुशगवार हवा नसीम वो हवा जो हल्के हल्के चलती है उसको कहते हैं नसमा का लफ्ज जो है ये मुतअद्दिद जगह पे हदीस में आया सैयदन अली रजी अल्लाह को भी कसम खाते थे तो कहते थे अल्लजी खलक अल हब्बा व बरन नसम उस अल्लाह की कसम जिसने दाने को चीर के उसमें जान पैदा की जिसने दाने को पैदा किया व बरन नसम और उस अल्लाह की कसम है जिसने रूह बनाई क्योंकि नस्मा में नरमी पाई जाती है इसीलिए शुतर ऊंट का जो पांव होता है और ऊंट का जो पांव होता है इसके अंदर के हिस्से पर भी मैं मंसिम कहते हैं क्योंकि तो भी बड़ा नर्म होता है ऊंट के तलवे को देखें वो बड़ा नर्म होता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब कई जगह पर इस्तेमाल फरमाया आपने फरमाया हर नस्मा में 360 जोड़ होते हैं यानी इंसानी जिसमें छोटे बड़े शुमार किए जाए 360 जोड़ होते हैं अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वाकई 360 जोड़ होते हैं क्या आपने मुहावरा इस्तेमाल फरमाया कि बेशुमार जोड़ होते हैं जैसे हम कभी उर्दू में बोलते हैं कि 20वीं मर्तबा तुम्हें समझाया है 20वीं मर्तबा ये कहा है या 20वीं मर्तबा ये बात हो चुकी है तो 20वीं से मुराद अब 20वीं को कर लें तो भी 5वीं हो सकता है 4वीं हो सकता है लेकिन मुराद बोलने वाले की कसरत से होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 360 जोड़ होते हैं इंसानी जिसमें यानी बेशुमार जोड़ होते हैं जब मुमकिन है कोई इसकी तशरीह करना चाहे कोई डॉक्टर हो रोगी ने तो वाकई 360 निकला है अभी इससे बहस नहीं है लेकिन वहां भी आया है कि नसमा भी इससे जोड़ो तस्दीन वो भी इसी से निकला तो नसमा का मतलब अरबी जुबान में जान जिंदगी शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो रूह होती है ना असल में वो है उसका मुख्तलिफ नाम आए किताबों कभी वो फुकहा और ये सूफिया कहते हैं ये रूह इलाही है कभी वो लफ्ज लिखते हैं रूह कुदसी है कभी कहते हैं रूह फौकानी है कभी कहते हैं कि नफ्स नातिका है ये नफ्स नातिका और रूह रब्बानी ये एक ही चीज है अब शाह साहब रहमतुल्लाह अपनी असल बात की तरफ आए कहते हैं एक जिस्म है उसके बाद नस्मा है नस्मा के बाद तीसरी चीज रूह रब्बानी है अब शाह साहब रहमतुल्लाह इस रूह रब्बानी पर बहस करते हैं ये खुलासे में तीसरी चीज आ गई वो इस रूह को जिसे हम और आप रूह समझते हैं रूह मानते ही वो कहते हैं ऐसे समझो जैसे बदन है ये क्यों जिंदा है इसलिए कि नस्मा पर सवार है नस्मा क्यों जिंदा है इसलिए कि रूह रब्बानी से उसे ताकत पहुंच रही है तो रूह रब्बानी जिंदगी को सप्लाई करती है नस्मा की तरफ और नस्मा जिस्म की तरफ नतीजा ये कि जब नस्मा कमजोर पड़ता है तो जिस्म मर जाता है और नचना कहां से पैदा होता है वो कहते हैं वो इन चारों अनासिर से पैदा होता है जब इंसान बीमार होता है तो ये चारों अनासिर आहिस्ता-आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं पानी पीता है तो वजन नहीं होता खाना खाता है तो वजन नहीं होता तो उसके निजाम में बीमारी की वजह से खलल पड़ता है जब खलल पड़ता है तो ये नचना कमजोर पड़ जाता है कमजोर पड़ता है तो एक दिन ये रूह ये जो नचना है ये इसको उठा नहीं सकता जिस्म को तो जिस्म मुंतका हो जाता है मर जाता है और नचना उससे निकल जाती है अब आगे आ गई रूह रब्बानी तो रूह रब्बानी और नचना का ताल्लुक कायम है केशव साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहस का खुलासा है ये चौथा खुलासा है जो आपसे अर्ज किया केशव साहब रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी अच्छी मिसाल दी है वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे समझो जैसे बोतल और बोतल से अगर आप पानी हवा को चूसते रहें हवा निकालते रहें तो एक मरहला ऐसे आ जाएगा कि जिसके बाद आप हवा खुद से नहीं निकाल सकते और ये हवा थोड़ी सी भी रहे फैलती रहेगी बोतल को अंदर से कायम रखेगी और जब आप उस मरहले पर पहुंच जाएंगे बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दें उसमें सिरे से हवा रही ना तो बाहर की हवा का टनों के हिसाब से जो प्रेशर है ये जाकर शीशे पर पड़ेगा और शीशा फट जाएगा धमाका हो जाएगा ये चीजें हो जाएंगी वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह ये नस्मा है ये नस्मा जब निकलती है तो जिस्म से बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस्म फट जाता है ये निकल जाता और जब तक जरा सी भी हवा बोतल में रहती है वो फैलती चली जाती है फैलती चली जाती है ये अनासिर अरबा जितने भी कमजोर पड़ जाएं कमजोर हो जाने के बावजूद ये नस्मा को कायम रखते हैं कुछ ना कुछ रखते हैं हत्ता ये भी बिल्कुल कमजोर जिस दिन जवाब दे जाते हैं ये बोतल खाली हो जाती है तो बाहर का प्रेशर इतना पड़ता है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती यानी नस्मा इससे अलग हो जाती है नस्मा अलग होती है तो ये बन जाता है और वो कहते हैं ये मौत असल में नस्मा और बदन इंसानी की मुफारकत है ये अलग हो जाते हैं लेकिन नस्मा जो है उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक इस जिस्म से फिर भी कायम रहता है मसलन उस नस्मा के ताल्लुक की वजह से मैयत सुनती है उस ताल्लुक की वजह से मैयत देखती है उस ताल्लुक की वजह से मैयत में कुव्वते हिस्स होती है और ये सारे सबूत हजरत रहमतुल्लाह ने लिखे मगर हजरत ने इसलिए लिखा कि ये किताब असल में है ही बहुत आला दिमाग के लिए है जिससे किताब सुन्नत को अच्छी तरह पढ़ा हुआ हो फलसफे को पढ़ाओ इल्मे नजूम को पढ़ाओ तिब को पढ़ाओ सारी चीजों को पढ़ा हुआ हो ये शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की आखिरी किताबों में से एक किताब है जिसे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यानी उन्होंने कम से कम 40 बरस तक पढ़ा और पढ़ाया इससे भी ज्यादा फिर जाकर ये किताब उन्होंने लिखी है इसलिए वो ज्यादा लंबी बहस से नहीं पढ़ते वो बिल्कुल मुख्तसर चीजें लिखते चले जाते एक लड़का मेडिकल कॉलेज से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारिग होता है आप उससे बात करके देखें उसे एक एक कुल्लिया याद होता है कि फलां मैथमेटिशियन ने ये कुल्लिया दिया था न्यूटन ने यह कहा था फलां ने यह कहा था फलां ने यह कहा था उसके मुकाबले में एक डॉक्टर जिसकी उम्र 80 साल हो गई वो मैं एक नुस्खा लिख देता है और उससे पूछे कि डॉक्टर जी कितने कहा था क्या होगा तो कहता है कहता बेटे वो तो पड़े हुए जमाना हो गया अब इतना पता है कि मसला ये वो है जब इल्म असल में उसका मर्ज बाहर आ जाता है रूह बाहर आ जाती है वहां पे अल्फाज और इत्तलाहात याद नहीं रहती लेकिन वो मर्ज तक पहुंच जाता है कि असल मसला क्या है इसी तरह चाहता ब्रह्मचार्य ने ये जो किताब लिखी है बहुत गहराई में जाके उन्होंने इस पे दलायल नहीं दिए कि नस्मा का जिसमें इंसानी से कितना ताल्लुक रहता है मगर चाहता ब्रह्मचार्य की बात की वजाहत में भी कहते हैं कि मसलन हदीस में आया है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस हाल में मरा मफहूम ये कि वो अपने आप को लोगों से अच्छा समझता था बेहतर समझता था यानी किबर में मुब्तला था मुतकब्बिर था और उसकी ख्वाहिश थी कि औरतें उससे रोएं और बुलंद करें आवाज इसीलिए शरीयत ने मना किया ये कभी आवाज है रोने में औरतों की ये कभी आवाज है निकल जाती है कोई हर एक बाकायदा बैन करना सही बुखारी में आता है सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह जब इंतकाल हुआ तो औरतें आई और उन्होंने बैन शुरू किया سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ولید کو اور کہا جاؤ ان عورتوں کو نکالو یہاں سے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے, مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی ہی رسومات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور جب لوگوں نے شروع کر دی اور باقاعدہ ان عورتوں کو سزا دی گئی کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی, اتنا منع کرتے تھے اس ماتم کو. یہ بالکل درست نہیں, تبھی رونا ہے اس میں جو آواز آتی ہے عورت کی مرضی بلند ہو جاتی ہے, اس میں کوئی رج نہیں. تو یہ جو میت چاہتی ہے کہ اس کا نام لوگ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے کہتی ہیں عورتیں وا شمساؤ آئے سورج کی طرح میرا بھائی, اور بیٹی کہتی ہے وا کمراہ آئے میرے چاند جیسا ابا, تو یہ چاہتا تھا نا کہ لوگ اس کی تعریف کریں مرنے کے بعد. ایک ہے تعریف کی تمنا ہو جب کہ اللہ نے اسے کچھ دیا ہو کہ اللہ میرے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں, یہ ٹھیک ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ بجعلنی لسانت کے خلاف ترین, اور اللہ دنیا میں آخری زمانے تک جو لوگ آتے رہے وہ مجھے اچھے نام سے یاد کرتے رہے میرے لیے یہ بات قائم کر دی. اب تک جو پڑھتے نا کما صلی تعالیٰ سیدنا ابراہیم کا مبارک تعالیٰ سیدنا ابراہیم, تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کا نام اب تک رکھا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ اور متکبر اور مغرور آدمی خدا کا نافرمان, اور رکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی عورتیں بہنیں بیٹیاں یہ کہتی ہیں فرشتے تھپڑ مارتے ہیں کھینچ کے منہ پہ اور کہتے ہیں یہ تو نے سن لیا, تو یہی چاہتا تھا نا مرنے کے بعد یہ ہو بس ہو گیا, اور فرشتے مارتے ہیں اس کی پیٹھ پہ اور اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز. تو کیا واقعی ایسا تھا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ بچیت کو احساس ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنی میت کو غسل لیتے ہو نہلاتے ہو تو میت سمجھتی ہے کہ مجھے کون نہلا رہا, اور آپ نے بتایا جب تم اسے لے کر چلتے ہو تو میت جو بری ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہ لے جاؤ نہ لے جاؤ, اس لیے کہ آگے آگ نظر آ رہی ہوتی ہے جو کچھ کر دوسری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جو میت اچھی ہوتی ہے تم جب اسے لے کے چلتے ہو تو جلدی کے لیے بھی کہتی ہے. آپ نے فرمایا اپنی مردوں کو جلدی دفن کیا کرو, برا آدمی ہے تو تمہاری جان چھوٹ گئی اور اچھا آدمی ہے تو تم سے اس کی جان چھوٹ گئی. ادھر انتظار ہو رہا ہوتا, بہت سے اللہ کے بندے ایسے وہاں اسماعیل صاحب احمد اللہ علیہ ہندوستان میں تھے, کاندلہ کے بہت بڑے آدمی تھے, بظاہر اتنے بڑے مولوی نہیں تھے لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتا تھا اس زمانے میں. تو جنازہ رکھا ہوا تھا, کئی سے دور سے کوئی مولوی لینے گئے کیا کہ جنازہ پڑھا دیں, تو ایک صاحب کوئی سوئے ہوئے تھے میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ اسماعیل کا جنازہ جلدی پڑھائیں اور انہیں بتاؤ کہ میں جنت میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. ایسے بھی لوگ تھے, اس لیے میت کے متعلق حکم ہے کہ جلدی کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے جو لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان میں نظمہ کا بدن انسانی سے جسم انسانی سے اتنا سا تعلق رہتا ہے, اور نظمہ کا آگے تعلق پانچویں کا جو خلاصے میں ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق آگے روح سے ہوتا ہے, اور روح ربانی نفس ناطقہ جسے کہتے ہیں فلاسفہ, وہ اللہ کی طرف سے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز ہے جس کی تشریح نہیں کی جا سکتی. اللہ کے ہاں ہے نفس ناطقہ کے بعد روح ربانی, اور اس روح ربانی کا ایک سرا ادھر نظمہ سے ملا ہوا ہوتا ہے اور ایک سرا اس کا اوپر کی طرف ملا ہوا ہوتا ہے. اس روح ربانی کا جو سرا ادھر ملا ہوا ہوتا ہے جسم کی طرف نظمہ کی طرف, اس میں معصیت ہوتی ہے, اور جو جسم کا حصہ ادھر ملا ہوا ہوتا ہے اس میں ملکوتیت ہوتی ہے, فرشتوں جیسا احساس اور پاکیزگی ہوتی ہے, اور یہاں جانور بنا ہوتا ہے. اب جس نظمہ میں جو اثر غالب آ جائے انسان ادھر نکل پڑتا ہے, حیوانوں جیسے کرتوت کرنے لگتا ہے, جب فرشتوں کی طرح وہ پاک ہو جاتا ہے, اس روح ربانی پر خدا کا فیض نازل ہوتا ہے, سب چیزیں ادھر آیا کرتی ہیں. یہ نظمہ میں انسان جو کچھ کرتا ہے روح ربانی سے وہ چیز ادھر وصول ہوتی ہے. مثلا روح ربانی جو تھی نفس ناطقہ, اب ایسے سمجھ لیں جیسے دھوپ پڑی, یہ نظمہ انسان نے کیسی بنائی ہے, इंसान ने अपने जिस्म को कैसा बनाया। शाह साहब रहमतुल्लाह इस तरह जोड़ते हैं कि हराम खाता, जब हराम खाता रहा तो नजमा में जो जिस्म इंसानी से पैदा हुई थी उस हराम का असर पहुंचा। गुनाह करता रहा तो नजमा को उसके दावदार किया। अब रूह रब्बानी से जो चीज आएगी इसकी रूह में वो आकर यहां पर गुनाह का रूप इख्तियार कर ली है, वो चीज पाप यहां आके नापाक हो जाएगी। उसकी मिसालें बहुत है, मसलन धूप आती है, धूप बिल्कुल ठीक होती है, कपड़ा उजला हो जाता है और धोने वाले कारण से आ पड़ जाता है। हवा चलती है, वही हवा फूल खिलाती है, खुशबू पैदा करती है और वही हवा जब गंदगी के ढेर से गुजरती है कि लोग खाना मांगते तो वहां से जो फैज आता है वो ठीक होता है। नसीमा ने जिस चीज को पाला है उसके मुताबिक वो ढल जाता है। इसकी एक और मिसाल है जमीन जी, जैसे बारिश होती है तो आसमान से साफ पानी आता है ना, फिर यहाँ पर आकर वो पानी जो है अगर ऊपर मिट्टी है छत पे कच्चा छत है तो नीचे जो पानी आएगा ये सारे का सारा गदला ही होगा ना, और छत अगर संगमरमर का है बिल्कुल साफ है तो नीचे जो पानी आएगा वो साफ हो। इसीलिए हदीस में आया है, अगर इस हदीस की सनद पे नजर करके बाजराती से हदीस शुमार नहीं किए और कुछ ने लिखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साफ फिजा में सांस लो, ऐसे ना हो कि फिजा आलूदा हो और तुम्हें दमे की बीमारी लग जाए। दमा हो जाता है ना और उसमें हवा के असरात होते हैं। ये यहाँ नसमा की बहस की है ना अहले लुगत ने, वहां वो इस हदीस को लाए। बहुत सारी हदीस मानने से इनकार किया है लेकिन बहुत सारे ने कहा कि हदीस है क्योंकि पोल्यूशन जो होगी वो इंसान के लिए असर करेगी। अब ये पोल्यूशन का जो अक्सर तस्वुर है कि हवा साफ होनी चाहिए, ये चीजें होना चाहिए, उसका एक असर वहां भी आया है कि इंसान ऐसी चीजों में सांस ना ले जहां पर बीमारियां हैं या गंदी चीजें हैं, क्योंकि सांस के जरिए उसके हवा जो अंदर जाएगी वो उसकी सेहत पर असरअंदाज होगी। शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं रूह रब्बानी से जो चीज चलती है वो साफ होती है, नजमा में पहुंचती है, इसके फरिश्ते का असर भी हो सकता है और जानवरों का असर भी हो सकता है। तुम इसे अगर बहीमियत के जानवर पने में ले आओगे माज़ अल्लाह तो वहां से चीज साफ आई थी तुमने इसे खरीद। एक और मिसाल ले, बच्चा दूध पीता है, बड़ा आदमी दूध पीता है, सही हो तबीयत तो वही दूध खालिद जी खाता है, जाकर खून या दीगर अज्जा पैदा कर देता है, इंसान की सेहत अच्छी हो जाती है। और अगर मेदा नाफिस हो जैसे कि आजकल होता है तो खालिद दूध नहीं पी सकता, खालिद जी नहीं खा सकता। ये नहीं है जिस चीज का कसूर है, बल्कि इंसान ने जिस चीज को अपने अंदर समो लिया है वो चीज है जो की गड़बड़ कर रही है। ये है खुलासा शाह साहब रहमतुल्लाह जो बयान किया है। और फिर वो नसमा और रूह के मुताल्लिक ये बताते हैं कि आलम इस्लाम आलम मिसाल से उसका असर मिलता है और आकर पर कहते हैं कि रूह के मुताल्लिक मैंने ये चीजें तुम्हें बताई हैं कि किस तरह नसमा और रूह और जिस्म का ताल्लुक होता है। बस इसे तुम याद रखो क्योंकि आगे चलकर इसकी मुबाइस आएंगी। और तब लिखिए कि मैं तुमसे कोई ऐसी चीज बयान करूं ऐसा पर्दा उठे जो इस इल्म से भी आला इल्म है, यानी शाह साहब रहमतुल्लाह इसलिए जगह फरमाया इस बैस में कि मुझे अपने विजदान से मालूम हुआ है मैंने जो रूहानियत में तरक्की की है तो फिर जाकर मुझ पर ये मुनकशिफ हुए हैं अलूम, लेकिन मैं इसका जिक्र नहीं करता, बस जितना जो कुछ बता दिया है इसी को।